ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है और आज के दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और ये जो लीला है इस सतयुग की घटना है, तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी शक्ति दें और प्रोटेक्ट करें हमारी भक्ति की, ताकि हम प्रभुपाद जी की सेवा कर सकें, प्रचार प्रसार कर सकें, क्योंकि नरसिंह भगवान बहुत ही हमारे सुरक्षा कवच हैं। भक्त को बचाने वाले कौन हैं? नरसिंह भगवान, जिस तरह से उन्होंने प्रहलाद महाराज को बचाया, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, गीता में भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तो भगवान कहते हैं मैं ही इस धराधाम पर आता हूँ और जिस युग भी, हर युग में, जिस युग में हमारी जरूरत पड़ती है तो हम आते हैं। वास्तव में देखा जाए इस श्लोक के आधार पर, तो भगवान को जो सबसे ज्यादा अवतार लेना पड़ा, सतयुग में लेना पड़ा। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा भगवान को बार बार सतयुग में ही आना पड़ा। त्रेतायुग में तो एक ही बार आए, द्वापर युग में एक ही बार आए, लेकिन सतयुग में सबसे ज्यादा भगवान को आना पड़ा। इससे पता चलता है कि सतयुग में वातावरण तो अच्छा था, सतयुग था, लेकिन फिर भी राजसों का प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए तगड़े राक्षस भी आते थे और उनको मारने के लिए भगवान को भी आना पड़ता था। तो इसलिए सतयुग जो है, देखा जाए तो कलयुग से कलयुग ज्यादा अच्छा है कि कलयुग में देवता भी आराम से रह रहे हैं और पृथ्वी पर सब लोग आराम से रह रहे हैं, लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं था, क्योंकि हिरण्यकश्यप का जो प्रसंग है यही बताता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पर आना चाहते हैं तो एक भूमिका तैयार करते हैं और एक भूमिका तैयार हुई जब चारों कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में गए और रास्ते में उनको द्वार पे ही उनको रोक लिया गया जय विजय के द्वारा। और चूंकि चारों कुमार बाल्यावस्था में ही थे तो उम्र में ज्यादा, लेकिन वे बाल्यावस्था में ही रहे, इसलिए नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में ही वो गए, तो उन्होंने इसलिए रोक दिया कि आप इस अवस्था में, नग्न अवस्था में आप कैसे भगवान का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, तो उन्होंने रोक दिया। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों जो है भयंकर राक्षस बनोगे और तीन बार राक्षस बनोगे पृथ्वी पर जा करके। तो वही श्राप बस ए जय और विजय, क्योंकि सब कुछ भगवान की योजना के तहत होता है। आप खुद सोचिए, अगर भगवान इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न अवतारों में आ करके अपनी दिव्य लीलाएं नहीं किए होते तो हम लोग किसकी कथा सुनाते और किसकी कथा सुनते हैं? क्योंकि जितने भी दिव्य ग्रंथ हैं इसमें क्या है, भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। अगर भगवान इस पृथ्वी पर आते ही नहीं तो हम लोग कैसे जानते कि भगवान है? तो भगवान इस पृथ्वी पर आने से पहले सारी भूमिका भगवान ही तैयार करते हैं। भगवान ने ही इस सृष्टि की रचना की। भगवान तो आराम से क्षीर सागर में शयन कर रहे थे लक्ष्मी जी के साथ, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा हुई हमें एक भौतिक संसार में क्या करना है, प्रकट करना है, ब्रह्मा जी को पकड़ना है, सृष्टि की रचना करनी है। तो भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तो सब कुछ, इसीलिए गीता भगवान कह रहे जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है सबका स्रोत मैं ही हूँ, और चाहे पृथ्वी हो चाहे स्वर्ग लोग जितने भी हैं सबका स्रोत कौन है, भगवान ही है। तो भगवान ही इस सृष्टि की रचनाकार है, रचना करने वाले हैं, और चूंकि सृष्टि का रचना करने वाले वही है तो वो जैसा चाहते हैं ऐसा हमको आनंद देने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं, कि पूरी तरह से भगवान क्या है, स्वतंत्र है। तो ये भगवान का है। तो आनंद, भगवान भी आनंद के आगार हैं, तो आनंद लेने के लिए और हम सबको कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। तो ये जब भूमिका बनी तो जय और विजय, एक पहले जो राक्षस बने हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप, हिरणाक्ष का वध भगवान ने किया वाराह के रूप में अवतार लेकर के, और जब वो मारा गया तो कम ये जो हिरणाकश्यप था उसको बहुत क्रोध आया, लेकिन सबसे पहले उसने क्या काम किया कि जो उनकी पत्नी थी, रानी थी और परिवार के लोग थे सबको उसने एक शिक्षा दी, और ऐसा शिक्षा दिया जिसे पूरा आत्मा का ज्ञान उसने दिया, आत्मज्ञान पूरा दिया, जैसे भगवद गीता में भगवान आत्मा और शरीर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ कश्यप भी एक विद्वान की तरह और सुंदर दिव्य ज्ञान दिया है, लेकिन जब उसकी पत्नी और सब परिवार के लोग शोक से निवृत्त हो गए तब अपने रंग में आया, उसने सोचा, एक प्लान बनाया कि अब मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके पहले शक्ति अर्जित करूंगा और उसके बाद फिर हम अपनी शक्ति का क्या करूंगा, दुरुपयोग करूंगा। क्योंकि ये जितने भी राक्षस प्रति के लिए लोग होते हैं ये पहले बड़ी तपस्या करके प्रार्थना करके शक्ति अर्जित करते हैं, और जिससे बर्ताव लेते हैं इतने कृतज्ञ होते हैं कि उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। एक दुष्ट प्रवृत्ति का, जो दुष्ट स्वभाव का लोग होते हैं इनका यही हालत है। जैसे वृत्तासुर, वृकासुर क्या होते हैं, भस्मासुर, वृकासुर, उसने भी ऐसे किया था, उसने शंकर जी को प्रसन्न करके क्या क्या वरदान मांगा कि जिस पर मैं हाथ जिसके ऊपर रख दो वो भस्म हो जाए, है ना। तो जैसे ही आशुतोष भगवान शिव जो एक महान वैष्णव है उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उल्टा उन्हीं के पीछे पड़ गया, उन्हीं पर हाथ रखने का। अब शंकर जी अपनी रक्षा करने के हर जगह गए, कोई बचा नहीं पाया, अंत में कौन बचाते हैं, भगवान ही बचाते हैं। भगवान ही मौनिक रूप धारण करके आए और कहा कि तुम्हें कैसे विश्वास हो गया कि ऐसा हो जाएगा, तो मुझे तो विश्वास नहीं होता कि हाथ रखने से भस्म हो जाएगा। तो कहा, उसने कहा कि तुमने सोचा ही नहीं, अरे कहीं पहले टेस्ट तो करो। तो भगवान ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के उसी के ऊपर रख दिया और भस्म हो गया। इससे पता चलता है कि भगवान ही क्या है, महान है। और शंकर जी ये ब्रह्मा जी वरदान तो देते हैं, और जब मुसीबत में स्वयं पड़ जाते हैं तो किसकी शरण जाते हैं, भगवान की शरण जाते हैं, और भगवान की क्या करते हैं, सुरक्षा करता है। तो इससे शिक्षा हमको क्या मिलती है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं और बाकी सब क्या है, देवी देवता हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे शंकर जी हो, कोई भी क्यों हो, भगवान भगवान होते हैं, देवी देवी होती हैं, देवता देवता होते हैं, मनुष्य मनुष्य होता है, यक्ष गंधर्व किन्नर सब अलग अलग होते हैं। ये ध्यान रखें, ये नहीं जैसा आजकल के मायावादी लोग और मनुष्य लोग कहते हैं कि सब भगवान, तुम ही भगवान, हम ही भगवान, सब भगवान, ऐसा नहीं है। जब तुम देवता नहीं बन सकते तो भगवान कैसे बन सकते हो। तो आजकल के लोग जो अपने आप को कृष्ण या कृष्ण का अवतार मान लेते हैं एक गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। तुम एक साधारण देवता नहीं बन सकते, तुम भगवान पर नहीं कीमत करते हो, लेकिन इतनी अज्ञानता है आज के वर्तमान युग में कि बड़े बड़े साधु संत भी अपने आप को क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का अवतार मान लेते हैं या भगवान घोषित कर देते हैं। ये स्थिति है। तो यही सब शिक्षा देने के लिए भगवान अपने भक्त और भक्ति का महत्व देने के लिए ये सब लीलाएं करते हैं, जिसमें नरसिंह भगवान की ये कथा आती है। अब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पहाड़ों की वादियों के बीच में और एक पैर पर खड़ा हो गया। तो देवताओं का 100 वर्ष जो देवताओं का दिन होता है उसके हिसाब से बड़ा भयानक जो है तपस्या शुरू कर दिया। एक पैर पर खड़ा होना इस साधारण काम नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि आप आधे घंटे एक पैर पर आप खड़े रहिए तो आप नहीं खड़े हो सकते। कोई खड़ा हो सकता है? आप नहीं खड़ा सकते। अरे आप पैर शर्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, एक पैर उठाते तो गिरने का डर रहता है, इतना डर रहता है। तो एक पैर पर बिना कुछ खाए पिए है ना, और इतना साल तक जो है तपस्या करना बहुत भयानक तपस्या थी। और तपस्या ऐसा कि कोई भंग नहीं कर सकता है ना। कि बताया गया है कि जिसमें उसने तपस्या शुरू की, जो चींटियां होती हैं उसके मांस को खाना शुरू कर दिया, अब पूरे बॉडी को जिसने खाकर सिर्फ हड्डी का ढेर सी हड्डी रह गई थी, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुआ। और हमें रात में एक चींटी अगर आ जाए है ना तो विचलित हो जाएंगे। अका हजारों करोड़ चींटियां जो है उसको चेक कर गई, लेकिन वो ट्रस्ट से मुझ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी का नाम लेते ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः। अब बताया गया भागवतम में कि जिस तरह से उसकी तपस्या से अग्नि प्रज्वलित हो गई, उसके शरीर से अग्नि प्रज्वलित हो गई और उससे जो धुआं ऊपर की ओर उर्ध्व गति की ओर जब जाने लगा, उससे पूरा ऊपर के जितने लोग हैं सब परेशान हो गए, देवता लोग भी परेशान हो गए। इस तरह से पूरा वातावरण जो है धुंध हो गया, लोगों को जीना दूर हो गया। तब जो है सारे देवता लोग भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा चिंता मत करे, सारी व्यवस्था हो रही है, सब हो जाएगा। तो ये देवता जब भी मुसीबत पड़ते हैं तो भगवान के पास ही जाते हैं। तो यही शिक्षा हर लीला से ही शिक्षा आती है कि भगवान ही क्या है, सोए पर है। तो देवी देवता पर भी जब भी मुसीबत पड़ती है तो भगवान का आश्रय। जब इतनी बड़ी तपस्या से जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जल्दी जा करके प्रकट होइए, आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए, नहीं तो हम लोगों का जीना दूर हो जाएगा। अब इसके पीछे एक और प्लानिंग थी। इधर जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था तो यही मौका देख करके इंद्र और दूसरे जो प्रमुख देवता थे वो अटैक कर दिए हिरण्यकश्यप के महल में, और जो प्रहलाद महाराज की माता थी कयाधु उनका हरण कर लिया। जब आकाश मार्ग से अपने विमान से इंद्र लेके जा रहे थे, उसी समय नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो इंद्र ने कहा कि अभी तो तपस्या कर रहा है, लेकिन इसके गर्भ में जो पुत्र है मैं उसको भी मारना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो अकेला ही काफी है, अगर बेटा भी आ गया तो दोनों बाप बेटे तहलका मचा देंगे, इसलिए हम गर्भ को क्या करेंगे, नष्ट कर देते हैं। तब प्रहलाद नारद जी ने कहा अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं इसके गर्भ में एक भगवान का महान भक्त पड़ रहा है, इसलिए तुम इसको मार नहीं सकते, और चूंकि भगवान का भक्त है इसलिए छोड़ना पड़ेगा। तो नारद जी की बात मान करके इंद्र क्या किए, ले आए और अपने आश्रम में। तब नारद जी का एक आश्रम हुआ करता था और नारद जी आश्रम में रहते थे, क्योंकि तब ऐसा प्रेम ना था कि आप कहीं रहेंगे एक पल, कुछ पल के लिए रुकेंगे, ठहरने की तब व्यवस्था, तो श्राप नहीं मिला था, इस श्राप बाहर मिला था, तो कहीं ठहर नहीं सकते थे नारद जी। तो नारद जी अपने आश्रम में कयाधु को लेकर गए, जो भगवान का वर्णन कथा का श्रवण उनको उनकी माता को कयाधु को जब सुनाना शुरू किया, तो प्रहलाद जो कि अपनी माँ के गर्भ में थे वे सारी कथा सुन रहे थे, भगवान का गुणगान पूरा सुन रहे थे। तो अंदर सुन करके क्या हो गए, भक्त बन गए, अंदर ही भक्त बन गए, है ना। ध्रुव महाराज तो 5 साल के बाद जब भगवान का दर्शन हुआ तब भक्ति उनके अंदर आई। लेकिन प्रहलाद महाराज एक ऐसे भक्त शिरोमणि है जो कि माँ के घर में ही भगवान के पक्के भक्त बन गए। और नारद जी ने इतना बढ़िया इन्वायरमेंट उनके आश्रम में था, और क्रियादु भी नारद माने खूब वहाँ पे आश्रम को सेवा करके कथा श्रवण करके और उनकी सुरक्षा। इधर या तो प्रसंग चल रहा है, उधर भगवान प्रहलाद महाराज कथा सुन रहे हैं, इधर उनके पिताजी तपस्या में लगे। अब जब देवताओं ने प्रार्थना की तब ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए, उन्होंने भृगु मुनि और एक दो और ऋषि को ले करके आए। अकेले उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए वो साथ लेकर के आए, है ना। और जब वहां पे आए तो सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। तो बड़े ध्यान से उन्हें जिधर से आवाज आ रही थी ब्रह्मा नमः, वो बड़े सावधानी से उधर गए तो देखा कि आवाज तो आ रही है लेकिन शरीर नहीं दिखा, एक हड्डी का ढांचा दिखा दे रहा है कि और जो दीमक है उन्होंने अपना घर बना रखा था, है ना। तो इस तरह से बड़े एक दीमक ने वो बना रखा था। तो उन्होंने क्या किया, कमंडल से जल निकाला और उसके ऊपर छिड़का। जैसे छिड़का वो सब जो है जो उसका हड्डी थी वो पूरा गोल्डन की तरह, सिर्फ उसका नाम हिरणा का सोने की तरह, एकदम सोने की तरह गोल्डन की तरह, जैसे प्रभु जी पीला पीला कपड़ा पहने हैं ऐसे पूरा शरीर सब गोल्डन में आकर के अब हिरणा का प्रकट हो अपने पूरे असली स्वरूप में आ गया। और चूंकि वो जो छिड़काव हुआ उससे उसका जो तपस्या से और उसके छिड़काव से उसका सिर और कांतिमान सुंदर बन गया गोल्डन। और फिर ब्रह्मा जी को उसने दोनों प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हिरण्यकश्यप, आज तक पूरे इतिहास में इतनी कठिन तपस्या न किसी ने आज तक की है और न भविष्य में कोई करेगा। ये बताया उन्होंने कि जो तपस्या तुमने की ऐसी तपस्या भविष्य में कोई नहीं करेगा, तो इसलिए हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, अब तुम वरदान मांगो। तो ओ जब वरदान मांगना तो अमर होना चाहता था, तो ब्रह्मा जी ने मना कर, देखो मैं खुद अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन और कुछ वरदान मांग लो। तो बुद्धिमान था, वरदान उसने बड़े दिमाग से मांगा। उसने कहा कि जब आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे किसी मनुष्य से किसी पशु से, वो पशुओं से उसका डर लगता था क्योंकि भगवान ने जो मारा था वो वराह का एक स्वर का रूप धारण कर मारा था। तो कहे कि विष्णु जो है बहुत चालाक है, वो जानवर के रूप में भी आ सकता है। तो उसने कहा कि ना हम किसी मनुष्य मरूं ना किसी पशु से मरूं, है ना, माने इनसे नहीं मिला, वो डर रहा था इसलिए कहीं मैं पशु से भी नहीं मारा जाऊं। फिर जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, मैं किसी से मारा ना जाऊं, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में। अब बताओ आदमी कब मरेगा, आदमी को तो बड़ा दिमाग लगा था, आदमी मरता है तो दिन में रहेगा रात को मरेगा, लेकिन उसका दिमाग देखिए कहता है न दिन में रहो न रात में रहो। फिर बोलता है कि मैं अंदर बोलो बाहर बोलो, बोला था कितना बुद्धिमान था, है ना। लेकिन कोई कितना भी बुद्धिमान करे, लेकिन जो सबको दुनिया को बुद्धि देता है उससे ज्यादा कोई बुद्धिमान हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उसमें एक क्या है, बुद्धि, है ना। तो भगवान से ज्यादा कोई बुद्धिमान हो नहीं सकता। और हम सब जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकश्यप से कहते, जब हिरण्यकश्यप पूछता है कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, है ना, तो बताते हैं क्योंकि जो तुम्हें शक्ति दे रहा वही मुझे बचा भी रहा है। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में सबके हृदय में विराजमान है। तो जब हिरण्यकश्यप ये वरदान मांग रहा था तो उसको पता नहीं था भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वो तो तुम्हारे भी हृदय में मौजूद थे। अच्छा तुम ऐसा वरदान मांग रहे हो, तो भगवान वही अपना स्वरूप आके तुम दिन ना दे, तुम सारा भगवान अपना स्वरूप समझ लिया कैसे तुम्हें मारना। तो अपने बुद्धिमानी से वरदान, और वरदान पाने के बाद फिर वो अपने असली रूप में आ गया, क्योंकि पहले इतनी ताकत नहीं थी, वो अटैक नहीं करता था। जब ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिल गया और जब वरदान ले करके घर वापस आया, तब जो है नारद जी ने कयाधी को सब धन्यवाद वापस किया है कि नहीं, और प्रहलाद महाराज को ले करके आए। अब प्रहलाद महाराज भी कहाँ पहुँच गए हैं, अपने महल में, पिताजी के महल में पहुँच गए हैं। अब इधर रावण क्या हिरण्यकश्यप अब भयानक अत्याचार करना, सबसे पहले उसने अटैक किया देवताओं के राजा इंद्र पर। जितने राक्षस हुए हैं हमेशा स्वर्गलोक पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि जो इंजॉयमेंट स्वर्गलोक में है वो किसी लोक पे है नहीं, बैकुंठ लोक को जा नहीं सकते, वहां तो भगवान का उस चल रहा है। लेकिन सबसे कमजोर कड़ी कौन है, इंद्र है देवताओं की नजर में, इसलिए बस उन्हें बात। और इंद्र को पराजित करने के बाद, क्योंकि जब राजा ही पराजित हो जाता है तो बाकी तो सब पराजित ही हैं, तो जब इंद्र को उसने स्वर्गलोक से निकाल दिया, अमरावती में पूरा कब्जा कर लिया, नंदन वन में स्वयं विहार करने लगा, तो बाकी सब देवता अपने आप भाग गए, क्योंकि जब कोई राजा पराजित हो जाता है तो दूसरे सैनिक अपने आप भाग जाते हैं, तो बाकी सब देवताओं की यही बुरा हाल, सब जो है भाग। और यही नहीं, वो जब वहां बैठा तो बताया गया है भागवत में किस तरह से जितने भी देवता थे प्रतिदिन आते थे उसके यहाँ हाजिर लगाते थे, खाली हाथ नहीं आते, कोई ना कोई उपहार लेके आते थे, आते थे फूल चढ़ाएंगे उसको। बताया गया है कि रावण तो कुछ भी नहीं था, रावण से ज्यादा खतरनाक कौन था, एक हिरण्यकश्यप। इसके बाद बताया गया कि कम से कम रावण के दरबार में ये था कि देवताओं को रोज जाना नहीं पड़ता, उपहार लेके जाना नहीं पड़ता, कभी कभी उसकी इच्छा होती थी ब्रह्मा जी को बुलाता था, अपने सभा में बुलाता था, इस टाइम खड़े जा। लेकिन इसने नियम बांधा था, है ना, इसने नियम बनाया था कि डेली आने वाले देवताओं को हाजिर लगाना है, इसलिए बताया गया है कि सब देवता आते थे और बोले तो उपहार ले, खाली हाथ नहीं जाते थे, ऐसा खनघोर बनो गया। अब पूरा आदेश दे दिया था अपने राजों को कि कहीं भी पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, अर्थात जितना अत्याचार तुम लोग करना हो करो, पूरी छूट दे दिया था। तो इस तरह से जब हुआ तब जो है एक दिन अपने क्रधु ने अपने बेटे प्रहलाद महाराज को लेके आया। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर स्वरूप था, है ना, 5 साल के बालक इतना सुंदर स्वरूप देख करके वो अपने सिंहासन पर बैठा था, तो बड़ा खुश हुआ और प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में ले करके, और एक जैसे एक पिता का प्यार होता है वो पूरा प्यार दर्शाना शुरू कर दिया। और फिर पूछता कि कुछ तुमने क्या सीखा, कि उसको एक पता था कि किसी इसमें क्या सीखा, तो उन्होंने प्रहलाद महाराज ने भगवान के बारे में चर्चा शुरू कर दी कि जो जो कुछ है पिताजी ये सब भगवान का है, भगवान के द्वारा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और भगवान के द्वारा इसका क्या होता है, नष्ट होता है, सबके पालक भगवान। तो उसको ये बात बिल्कुल अच्छी लगी, कहे कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो मेरे शत्रु के बारे में बोल रहे हो, लगता है कि जरूर चुपके से आकर किसी शत्रु ने हम तुम्हें ऐसे शिक्षा दी, ले जाओ इसको, उसने उतार दिया। और जो शुक्राचार्य के तो बेटे थे, है ना, शरण नंबर, उनको बोला कि इसको इसको राशि विद्या सिखाओ, अपने पाठशाला में ले जाओ और इसको राशि विद्या सिखाओ, ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, ये तो मैं शत्रु के बारे में चर्चा कर रहा है, जबकि भगवान मैं वास्तव में हिरण्यकश्यप अपने आप को स्वयं भगवान घोषित कर रखा था, और उसके जितने चमचे थे सब भगवान भगवान बोलते, पूरे राज में सब भगवान, क्या हिरण्यकश्यप भगवान की जय जयकारा लगाते थे। तो इसको कहे कि मेरे बेटे को समझाओ कि मैं ही अर्थात तुम पिता ही तुम्हारे कौन है, भगवान है, और राशि को सही विद्या सिखाओ, ये जो विद्या सीख रहा है असली विद्या नहीं है, हमारी विद्या सीखा उसको लेके। उन्होंने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम इतने अच्छे लड़के हो, ये सब शत्रु की विद्या कहाँ सीखा, किसने तुम्हें सिखाया? क्योंकि यहाँ कोई आता तो है नहीं, तो कहीं देखिए भगवान सब हृदय में है, ये सारा दिव्य ज्ञान तो भगवान ही देते हैं। जब भगवान की जब कृपा होती है, उन्होंने बताया किस तरह से हम माँ के गर्भ में रहे और हमें इस तरह से माँ के गर्भ में रह करके अपने जो शिष्य थे उनके सपाटी लोग, जब कोई टीचर नहीं रहता था तो तब वो शिक्षा देते थे, तो खुद शिक्षा देते थे प्रणाम। तो उन्होंने ये बात कही कि इस तरह से जो है हमें सारा ज्ञान प्राप्त किया। और हमारे पिताजी वो भगवान थोड़ी हैं, तो झूठा तुम लोग ऐसा मानते हो, है ना? वास्तव में भगवान तो वह जिनके हाथ में हमारे पिताजी का भी है, माने सब कुछ उनके हाथ में भगवान का। जब ये शिक्षा रहे तो कहे कि एक दिन क्या हुआ कि फिर वो लेकर के आए प्रहलाद महाराज को। उन्होंने बहुत सोचा कि शायद ये ऐसा नहीं बोलेगा, कहीं देखो हम लोगों की रोजी रोटी तुम्हारे हिस्से है, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमको भी निकाल बाहर कर देंगे आपके पिताजी। इसलिए जैसा जो शिक्षा हम देते हैं वही शिक्षा अपने पिताजी के बारे में बताना है ना। तो जब प्रहलाद महाराज को लेके गए तो प्रहलाद महाराज पूछा, अब प्रहलाद महाराज भक्ति ज्ञान देना शुरू कर दिए। प्रहलाद महाराज कहे पिताजी सब सूक्त नहीं है, नवदा भक्ति भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, स्वम कीर्तन नवदा भक्ति ज्ञान देना शुरू किया। उसको बहुत गुस्सा है, उसको बहुत गुस्सा है और कहा कि इसको जो है अब तुरंत तत्काल ले जाओ और इसको राजी विद्या पूरी तरह सिखाओ। अब फिर गया, अब वहां पे प्रहलाद ने कर में क्या सीखा उन्होंने बताया। एक श्लोक बहुत सुंदर जहां बताया गया है, जो अपने इसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, सुखाय दुखम मोक्षाय संकल्प एक कर्मिण शताब्दी दुखम अनिहाय सुखावृता है। अनुवाद इस प्रकार से है, इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकवादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है, अतः वो तदनुसार कम करता है, किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। जो ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है तो ही उसके दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया, इसको एक बार फिर सुने, इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकवादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है, इसलिए वह तदनुसार कर्म करता है, किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील रहता है। जो ही वह सुख के लिए कार्य कर प्रारंभ कर देता है तो उसके दुख की अवस्था आरंभ होती है। यह संसार कितना विचित्र है ना, कि हर इंसान सुख चाहता है लेकिन सुख के बदले उसको क्या मिलता है, दुखी मिलता है। अब देखो लोग बड़े चतुराई से एक आरती भी लिख डाला है, वो आरती इस प्रकार के है जो कहते हैं कि सुख संपत्ति कर आवे कष्ट मिले तन का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ये सब कहने की बात है, हम तो कहते हैं एक एक अगरबत्ती लोग जलाते रहे घर में, यही आरती करते रहे 24 घंटे, जो समस्याएं हैं घर की एज इट इज बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, वैदिक नियमों के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाएंगे, तो कहने से गीत गाने से थोड़ी कुछ होता है। आप गीत गाते रहे ऐसे थोड़ी कुछ होता है ना। तो ये चीज हमें सीखना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति का जो प्रचार किया बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रचार किया, प्रैक्टिकल प्रचार किया कि इस तरह से हमको भक्ति करनी होती है। अब भक्ति करने के जो नियम बताए गए हैं उसका हमें पालन करना पड़ता है। और इस भक्ति करने से भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारे जो है कृपा करते हैं। अब भगवान की कृपा से क्या होता है कि दुख भी क्या होता है, सुख में बदल जाता है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। भगवान कृपा से जहर भी क्या हो जाता है, अमृत बन जाता है। लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी होगी और अनन्य भाव से भगवान की पूजा करनी होगी और भगवान का हमेशा चिंतन करना पड़ेगा, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने किया। अब ये प्रहलाद महाराज जो इन्होंने शिक्षा दी, ये प्रहलाद महाराज जब दोबारा भगवान के बारे में चर्चा की तो हिरण्यकश्यप जो था उसने तुरंत अपने बेटे को जो है फेंक दिया और कहा इसको इसी वक्त मार डालो। तो क्या हो, तो हमेशा राक्षस तलवार त्रिशूल भाला लेकर तो खड़े रहते हैं, प्रहलाद के सामने ही और हिरण्यकश्यप के सामने प्रहलाद को उन्होंने मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो टच ही नहीं कर पाता था, वो जब भाला फेंकता तो थे मारने, भाला टच नहीं कर, सब तंग आ गए कि तुम्हारे उसके सामने ही कहीं सर इसका ले जाओ और पहाड़ में नदी में फेंक दो। गए प्रहलाद महाराज को पहाड़ से नदी में भेज दिया। लेकिन हमारे यहाँ इस कान में कहावत बताया गया है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, कि भगवान यदि मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन यदि भगवान बचाना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता। यही पे ये बात चल रही थी। हिरण्यकश्यपों के जो सैनिक थे पूरी तरह से प्रयास किया मारने के लिए, तो जैसे ही फेंका भगवान ने बचा लिया। भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन बचा रहे हैं, क्योंकि अगर नदी है तो भी किसका है, भगवान का है। अच्छा भगवान की इच्छा नहीं है तो नदी सहयोग करेगी करेगी, क्योंकि सबका स्रोत कौन है, भगवान ही है। तो भगवान के अनुसार एक पूरा प्रकृति भगवान की डायरेक्शन में काम करती है ना। भगवान ने गीता में ही शिक्षा दी है कि जब प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में काम करती है। ये नदियां भी क्या है, भगवान एक प्रकृति के अंदर आती है, तो नदी की भी मालिक कौन है, भगवान ही है। तो अगर भगवान चाहते हैं नदी क्यों डूबेगी, क्योंकि प्रकृति तो भगवान ही प्रकृति के मालिक है, है ना। इसीलिए प्रकृति किसका साथ दे रही है, प्रहलाद महाराज का, याद है भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान की इच्छा है। भगवान नहीं चाहते कि हमारे प्रहलाद महाराज कोई खरोंच आए, तो इसलिए भाला भी क्या हो गए, कुछ नहीं कर पाए। तो कौन सुरक्षित कर रहा है, भगवान। वास्तव में भगवान का नाम सुरक्षा कवच बन गया है, क्योंकि प्रहलाद महाराज एक पल के लिए भगवान का नाम नहीं भूलते थे, हमेशा भगवान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, इतने भगवान में लीन होते थे कि उनको कोई मार रहा है पड़ रहा है कुछ नहीं, वो सिर्फ भगवान के चिंतन में। क्योंकि जब भक्त चिंतन करता है तो भगवान क्या करते हैं, उस भक्त की चिंता करते हैं। भगवान का भक्त जब चिंतन करता है तब भगवान उसकी क्या करते हैं, चिंता करते हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज चिंतन कर रहे थे, भगवान का ध्यान में थे, भगवान का नाम ले रहे थे, इससे सारी चिंता किसके ऊपर हो गई, भगवान की। तो अगर हमारी भक्ति, अगर हम इसी तरह से अपने आप को समर्पण कर देते हैं भगवान को, सिर्फ भगवान का चिंतन करते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा में रहते हैं, तो हमारी चिंता कौन करेगा, भगवान करेंगे। अगर कोई भक्त चिंता करता है इसका मतलब होता है कि वो चिंतन नहीं कर पा रहा है, ये अपना टेस्ट। अगर हमें किसी प्रकार की चिंता है इसका मतलब हमारा चिंतन नहीं हो पा रहा है। जो 16 माला जप करना चाहिए, 25 माला जप करना चाहिए, वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। जो 4 नियम है इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है ना, कुछ माने जो वैदिक सिस्टम बताए गए हैं, अगर हमारे अंदर टेंशन बढ़ता जा रहा है, चिंता बढ़ता जा रहा है, इसका हम लोग हमारे चिंतन में भगवान का नाम लेने में, भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं है, या प्रेम और विश्वास में कुछ कमी हो रही है, तभी भक्त ऐसा सोचता है। लेकिन अगर आप शुद्ध, जैसे प्रभुपाद जी क्यों सफल रहे, कि प्रभुपाद जी पूरी तरह से समर्पण और भगवान के नाम पर पूरा विश्वास। और प्रभुपाद जी अमेरिका गए इसीलिए नाम के बल पर ही इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया, क्योंकि टॉमकिन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी ने वहां डॉलर नहीं लुटाया लोगों है नहीं, उन्होंने क्या लुटाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही प्रहलाद दास यही नाम ले रहे थे, हरे हरे। जब भगवान का नाम, तो नाम में कितनी शक्ति है, क्योंकि नाम की ही शक्ति किसको बचा रही है, प्रहलाद महाराज का। फिर उनको खोते तेल में, अगर तेल का छींटा अपने पड़ जाता है तो हम जो है मरहम लगाना शुरू कर देते हैं। अब आप खोलते तेल में प्रहलाद महाराज को छूट दिया, इससे जैसे तड़का मारते ऐसे। लेकिन चूंकि भगवान बचा रहे हैं, वो खोलता हुआ तेल शीतल जल की तरह महसूस कर रहे थे। इसे कहते हैं भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब उनके जहरीले सांपों के बीच में एक कमर में छोड़ दिया गया, सांप दंडवत करने लगे, अर्थात सांप ऐसे खेल कूद रहे प्रहलाद महाराज खुद है। वो प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे केचुआ होता है ना, बरसात निकलता, सब बड़े बड़े जहरीले सांप केचुए के सवार होने लगे। जैसे जब केचुआ होता है गांव में, बच्चे उसको पकड़ लेते हैं। तो जहरीले सांप कैसे हो गए, जब उनको जहर दिया गया तो वे अमृत हो गया, वास्तव में भगवान उसको अमृत बना देते हैं। तो यही कारण है कि भक्ति का जो सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान पूरी तरह से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो प्रहलाद महाराज की जो कथा है, जो लीला है, ये हम सब भक्तों के लिए और भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान उसी तरह से अपने भक्त को कैसे जो है बचाते हैं। तो हमें भी भगवान बचाएंगे अगर हम इसी तरह से प्रहलाद महाराज के अनुगत, उन्होंने जैसा हमें भक्ति शिक्षा दी, अगर हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, भगवान की कथा हम श्रवण करेंगे। वास्तव में हम माँ के घर में तो श्रवण कर नहीं पा रहे है ना, क्योंकि आजकल तो माताएं वैसे भी कोई कथा होता नहीं सुनते है ना, सब टेलीविजन देखेंगे, सब ये करेंगे। आजकल तो वातावरण बिल्कुल दूषित हो गया है। तो प्रहलाद महाराज ने श्रवण, ये जो कथा है, जो भगवत गीता है, भागवत, इसका जो नित्य कर्म पाठ करेंगे तो उसका फल हमको क्या करेगा, मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक कंपल्सरी कर दिया कि सुबह और शाम, सुबह श्रीमद् भागवत कक्षा में हमें आना चाहिए और शाम को भगवत गीता की कक्षा में आना चाहिए, क्योंकि इसका हमें श्रवण करना चाहिए। भक्ति का शुरुआत किससे होता है, श्रवण से होता है, कि जो सुनता है वही सुधरता है, जो सुनता है वही सुधरता है। अगर आप सुनेंगे तो सुधरेंगे, और नहीं सुनेंगे तो कैसे। इसे सुनना बहुत ही आवश्यक है। तो जब भी कथा हो भगवान की, तो हमें अवश्य श्रवण करना चाहिए कि इसी से हमारा भक्ति क्या होता है, आरंभ होता है। तो प्रहलाद महाराज को मारने का पूरा प्रयास किया। यहाँ तक बताया गया कि एक उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसका नाम था होलिका, उसको एक वरदान मिला था, उसके पास एक वस्त्र था, वो वस्त्र ओढ़ करके अगर अग्नि में बैठ जाती थी तो अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। उसने कहा कि भैया आपका टेंशन मैं दूर कर दूंगी, क्योंकि बचेगा लगे है। तो कहे कि जब उसने सोचा कि भाई तुम भी आजमा लो, जब इतने लोग आजमाए कुछ नहीं हो पाया, तो तुम भी अपनी जो तुम्हारी शक्ति है उसका भी तुम दिखा दो। होलिका ने क्या किया, पूरा एक जलाया गया और होलिका प्रहलाद महाराज को लेकर के अग्नि, प्रज्वलित अग्नि में जो है वो बढ़ गई है। तो वही सीन उपस्थित हुआ कि जैसे ही अग्नि प्रज्वलित थी तो अग्नि जो है वो शीतल लगने लगी, किसको, प्रहलाद महाराज को। और होलिका को क्या किया, वस्त्र से पूरा जला दिया, क्योंकि अगर भक्त को कोई मार नहीं सकता, मारे किस राखी को, वही बात कि अगर कोई मार नहीं, कि भगवान बचा रहे, भगवान इसको जो बचाए तो उसको कोई मार नहीं सकता। वास्तव में सेतुबंध रामेश्वर में जब बताया गया कि जब शंकर जी की भगवान ने पूजा की, लोग इसको समझते नहीं, भगवान राम को बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान जो भी काम करते हैं बड़े मर्यादित ढंग से करते हैं। भगवान जब पुल बनाकर उस पार गए, फिर तत्काल धावा नहीं बोल दिया राम पर, उन्होंने क्या किया, एक बार अंगद को भेजा, एक बार आप जाकर के समझा दो कि अभी भी अगर समर्पण हो जाए, नहीं सुन जाए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, एक मर्यादा है। भगवान और शंकर जी को पूजा की, भगवान राम ने शंकर लोग कहते हैं जब उन्होंने शंकर जी पूजा की शंकर जी महान हो गए, ऐसा नहीं था। वास्तव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, शंकर जी भगवान का जप करते हैं, है ना। वो जानते हैं किसका जप करते हैं, वासुदेव का। जब पार्वती जी और शंकर जी से वार्तालाप हो रहा था तब पद्म पुराण बताया गया है कि पार्वती जी पूछती हैं कि दुनिया तो आपको ध्यान करती है ओम नमः शिवाय, लेकिन मैं देखती हूँ आप भी किसी का ध्यान करते हैं जप करते हैं। तो शंकर जी का मैं भगवान वासुदेव का मंत्र का जाप करता हूँ, ये बताऊ। तो इससे पता भगवान जी की मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला कर रहे हैं। तो भगवान जो शंकर जी था, जो शंकर जी है एक किसके, जो रावण था इस शंकर जी का शिष्य था, और भगवान अपने शिष्य के शिष्य को मारने जा रहे हैं। तो मर्यादा क्या करती है कि देखो भाई अब हम मारने के लिए आ गए, आप नाराज मत होगा कि हमारे शिष्य को जो है मार डाला, ना ना क्योंकि अब मैं शिष्य मांगा, ये बताया कि अब तो हम उसके की शंकर जी भी, जब सारे देवता गए थे भगवान के पास रावण के अत्याचार से, तो सर शंकर जी भी गए थे कि आप ही लोग आए थे कि रावण बड़ा अत्याचार कर, अब हम मारने के लिए आ गए तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है। वास्तव में ये उद्देश्य मर्यादित ढंग से भगवान, क्योंकि शंकर जी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव महान वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा संभव महान वैष्णव है। अब भगवान अपने वैष्णव के शिष्य को मारने जा रहे हैं, तो भगवान इसीलिए कहते हैं अब शंकर जी समझ गए। तो ये वास्तव में ये लीला है, ये तो ये भगवान की एक मर्यादा है। भगवान बड़े ढंग से जो है रावण को मारे, वहीं पे जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसी तरह से शीतल ठंडी हुई जैसे हनुमान जी के साथ हुआ। हनुमान जी जब उनकी पूछ में आग लगाई गई तो वही अग्नि है ना हनुमान के पूछ को मैं शीतलता प्रदान करी, लेकिन पूरे लंका को उसने क्या कर दिया, जला दिया। तो भक्त के साथ ऐसा ही होता है कि भक्त के प्रति जो है अग्नि भी क्या हो जाती है, शीतल हो जाती है। यहाँ प्रहलाद महाराज को भी अग्नि नहीं जला पाई, वो क्या हो गए, शीतल हो गए। जब सारे शस्त्रों से हार गया तब जो है बौखला गया हिरण्यकश्यप, और उस बौखलाहट से कहा कि आज प्रहलाद को मैं अपने हाथों से स्वयं मारूंगा, देखते कौन बचाता है। उसने प्रहलाद महाराज जब उसके महल में आए वहां क्या होते सभा में, तो बड़े बड़े भयानक भयानक राक्षस जो है ना सब वहां पे थे, सबके बीच में हिरण्यकश्यप जो है रावण प्रहलाद महाराज बोला कि वो कहा है तुम्हारा भगवान जो हमारे डर से दिखाई नहीं देता, कहा है तुम्हें, और मैं तुम्हें मारूंगा मैं दिखता हूं कहां, कहा है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद महाराज बड़ी विनम्रता से, भक्त का एक आभूषण है क्या विनम्र, भगवान को विनम्रता ही पसंद है, अहंकार तो भगवान को पसंद ही नहीं। तो सर विनम्रता देखिए, अपने पिताजी उसके कितने क्रूर हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज उतने ही विनम्र। कहा कि हे पिताश्री, हमें तुम्हें खड़ खमे सब जग व्यापक श्याम, अर्थात जो कृष्ण है हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आप इस तलवार में भी है, इस खम्भे में भी है। तो बड़ा ताजु क्या, इस खम्भे में, क्योंकि खम्भा आपके पास ही था तो कहीं इस खम्भे में भी है, तो कहीं आप खम्भा पास में है, तो कहीं इस खम्भे में भी है, तो कहा हाँ पिताश्री इस खम्भे में, अभी मैं देखता हूं। देखो अहंकार व्यक्ति को जो है ना विश्वास नहीं होता इनसे, भगवान पर मैं विश्वास नहीं होता कि अभी मैं देखता हूं, ऐसा करके उसने बड़े जोर से वो खम्भे पर जो है ऐसे प्रहार किया अपने तलवार से, और जैसे ही प्रहार किया वो जो खंभा था ना वो दरारे पड़ने लगे, दरारे टूटने लगा, और दरारे पड़ने जो टूटने लगा उनके प्राण से पड़ा। हिरण्यकश्यप जिस तरह से नरसिंह भगवान प्रकट हुए एक पल के लिए तो पीछे हट गया, डर गया, क्योंकि ऐसा दृश्य उसने कभी देखा नहीं था, क्योंकि आधा जो शरीर मनुष्य का हो और आधा सिर क्या है शेर का, शेर का ऐसे लोग देख डर जाते हैं, है ना। और जब शेर और नर है ना सिंह, नर और सिंह जब इकट्ठे हो तो डर लगेगा, ऐसा जब उसने देखा नहीं था, है ना, ऐसा ना तो मनुष्य देखा था न कोई जानवर देखा था, है ना। और इसलिए जो है जैसे प्रकट हुआ रास्ते में क्या खलबली मच गई। अब प्रहलाद महाराज उन्होंने पहली बार देखा कि भगवान के वो पहली बार प्रकट हुआ पृथ्वी पर, है ना। लेकिन वो समझ गए, बस समझ जाता है ये तुम्हारी कौन है, परम भगवान ने प्राण दिया। अब लेकिन इतना गुस्से में थे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, है ना, हिरण्यकश्यप भागा। और भगवान गुस्से में बताया गया कि किस तरह से जितने जो दूसरे राक्षस थे और नरसिंह भगवान को मारने के दौड़े, भगवान क्या किया, सबको मारना शुरू कर, जितने भी थे सबको मार। नरसिंह प्रहलाद व्यास एक कोने में खड़े होकर के सारा दृश्य देख रहे हैं और तांडव नृत्य अपना शुरू कर दिया। नरसिंह भगवान दौड़ दौड़ के पकड़ पकड़ के मार रहे, कैसे भाग रहे हैं, तो भगवान खींच के कहें अभी तो भाई में दिखा रहा था, एक छोटे से बालक तो अपनी ताकत दिखा रहा था, और जब जब बेटे का बाप आ गया है अभी तो बेटे को पुत्र को जो इतना कर रहे थे, जब तुम्हारा बाप आ गया उसका तो भाग रहे, बच्चे के तो कर रहे थे, सब मारना शुरू कर दे। आश्रम भगवान थोड़ा सा टाइम जो है पास कर रहे थे, क्योंकि भगवान को ये सब चीज में आनंद आता है, भगवान चाहते उससे वो दबोच के पकड़ के मार सकते थे लेकिन नहीं, इस तरह से उसको कर रहे हैं। और उसके बाद जब सारे राक्षस मारे जा चुके तो हिरण्यकश्यप अकेले बचा। अब हिरण्यकश्यप से नरसिंह भगवान से है वो ऊपर से गदा, जहां पे नरसिंह भगवान खड़े होते थे वहां गदा मारता था, नरसिंह भगवान उसके पीछे दिखाई देते थे, है ना, क्योंकि भगवान से कोई माया भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो प्रसन्न है, वास्तव में भगवान समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसने ऐसा मृत्यु का समय मांगा था कि न दिन में हो और न रात में हो। तो भगवान जो बीच का समय होता है गोधूली का समय, डस्ट गोधूली का जश्न होता है, न दिन में माना जाता है और न रात में। तो भगवान समय का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही गोधूली का समय हुआ, बिल्कुल राइट टाइम, भगवान एक सेकंड देने, जैसे ही गोधूली का समय हुआ भगवान उसको क्या किया, पकड़ लिया पकड़ लिया। अब पकड़ करके घसीटते हुए खींच करके दरवाजे पे लेके गए, क्योंकि दरवाजा न अंदर होता है न बाहर होता है, उसने मांगा था न हम घर के अंदर मारे जाए और न घर के बाहर मारे जाए, कि उसके दिमाग में आए ना कि बीच का भी कोई रास्ता होता है उसके दिमाग में नहीं आया। तब भगवान के एक बीच का रास्ता कि जो नहीं मांगा था भगवान उसी करे। और जैसे फिर उसने एक वरदान मांगा था कि मैं ऊपर मारूं न नीचे, न जमीन पे मरूं न आसमान मरूं, भगवान क्या के उस दरवाजे की डेड़ी पर खुद बैठ गए और उसको पकड़ करके अपने जंगे पर लेटा दिया। बड़े बड़े नाखून ऐसे और इतना भयानक लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत चार दो ऊपर के तरह एकदम खूंखार, वो तो डर गया, सिर्फ भगवान का रूप देख करके उसकी सिट्टी पिट्टी बंद हो गई, पूरा पोती बंद, वो कुछ कह ही नहीं पा, भगवान जैसा कह कर रहे हैं वैसा हो रहा, जैसे घसीटा तो घसीटा चला जा रहा है, ऐसा दृश्य हो गया जो भी बहुत कर रहा था, ताकि भगवान जैसा चाहे वैसे उसको गेंद की तरह खिला, क्योंकि गेंद भगवान के पाले में आ गई है ना, उसको गेंद किस तरह से खींचते हुए ले गए बढ़ा करके, जैसे ही अपने जंगे पर बैठाया अपने घूर करके उसको देखते थे, है ना, अपना दोनों हाथ जो पंजा था शेर का पंजा, भगवान छाती पर ऐसे धंसा दिया, चीरा नहीं धंसा दिया, धंसाने के बाद फिर भगवान जो है ऐसे ऐसे करके गरजते हुए बोलते हैं कि आप कैसे वो ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए सारे वरदान को पूरा करते हुए, सारी फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए एक भगवान के, ताकि तुम्हें ये मलाल न रहे कि नहीं नहीं मैं तो वरदान मांगा था ऐसा नहीं हुआ, कि सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए तो भगवान बता के मारा कि ब्रह्मा जी सोचे तो वरदान मांगे तो दिन में न रात में न अंदर न बाहर न ऊपर नीचे, इस सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए अब मैं तुम्हारा प्राण ले रहा हूं, करके भगवान फाड़ दिया। इतना कम्युनिकेशन जैसे कर ले रहा हूँ फाड़ दिया। इतना गुस्सा के फाड़ा, फाड़ने के बाद उसकी जितनी आते थे अपने गले में अपने आप से चढ़ गए, इतना गुस्सा होता है। अच्छा, मरने के बाद भी भगवान जो है शांत नहीं होते, वो खड़े छलांग लगा करके भगवान जिस पे वो बैठा था ना सिंहासन पर हिरण्यकश्यप, भगवान उछल के सिंहासन बैठ गए। अब बैठने के बाद ऐसे पूरा नाखून से करके अब इस तरह से चिघा रहे थे, चिघा करके उनकी बताया गया है भागवत में किस तरह से आग की लपटें निकल रही थी, सब डर गए। फिर ब्रह्मा जी जिन्होंने वरदान दिया था, ब्रह्मा जी वहाँ आके प्रकट हुए और कहते कि हे भगवान, हे प्रभु, आप शांत हो जाइए, हिरण्यकश्यप मार दिया गया। ऐसा बताया जैसे भगवान भगवान नहीं मार, भगवान को नहीं मार हुए। ब्रह्मा जी कहते अरे हिरण्यकश्यप ने मार दिया है, वो बच चुका है, अब तो आप शांत हो जाइए। इतने में शंकर जी आए, शंकर जी लाइन लगा करके है ना, माने जितने भी देवता थे तगड़े तगड़े सब प्रकट होने लगे और सब हाथ जोड़ करके एक लाइन में सब प्रार्थना कर रहे हैं कि आप किसी तरह से अब शांत हो जाए, कि सब बेचैन हो गए थे, जो लपटें निकल रही थी ना वो सब बेचैन हो गए। उसमें जब नहीं हुआ फिर लक्ष्मी जी स्वयं आए, तो ब्रह्मा जी और शंकर जी ने अपने राय ली कि लक्ष्मी जी चूंकि उनकी अर्धांगिनी है इनको आगे बढ़ाओ, शायद इनके पास में। लक्ष्मी जी जब ने प्रार्थना की तब भी भगवान शांत नहीं हुए। तब सबने कहा कि भगवान किसके सुनते हैं, भक्तों की, कि भगवान का वचन, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्त जैसे न चाहते हैं मैं नाचता हूँ। तो भक्तों का कितना महत्व देते हैं भगवान, इससे पता चलता है कि जब देवताओं ने ये कहा कि भगवान सिर्फ अपने भक्तों से प्रभावित होंगे, इसलिए अगर भक्त श्रीमणि प्रहलाद महाराज अगर प्रार्थना करेंगे तभी जो है प्रभु शांत होने वाले हैं, हम लोगों की बस की बात अब नहीं है, क्योंकि भगवान किसके बस में है, भक्तों। तो भक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है भगवान के इस वजह, और उस भक्ति करने का अवसर मुझे प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, और प्रभुपाद जी का दिया हुआ अवसर अगर हम भक्ति में नहीं लगाते हैं, इधर उधर अगर हम भक्त हैं तो फिर भक्त बनने का कोई मतलब नहीं। भक्ति, क्योंकि भगवान को क्या प्रसन्न है, भक्ति, भक्त, और भक्त को भक्ति करनी होती है, ये भक्त को भक्ति करनी होती है। जब भक्त भक्ति करता है तब भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रसंग से यही है कि भगवान अपने भक्तों का कितना महत्व देते हैं, क्योंकि भगवान को इसीलिए भगवान अपने भक्तों का वचन पूरा करने के लिए, प्रहलाद महाराज के वचन को पूरा करने के लिए भगवान खंभे से निकले। अगर भगवान चाहते ऊपर से फाट पड़ते, नीचे से पृथ्वी से प्रकट हो जाते, सामने से प्रकट हो जाते, पीछे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से प्रकट होकर कर दबोच लेते, लेकिन खंभे से ही, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कर दिया, एक भक्त ने कर दिया कि हाँ इस खंभे में है, इसलिए भगवान अपने भक्त को वचन पूरा करने के लिए भगवान खंभे से निकल। तो इतना भक्त प्रिय है भगवान को, और वो भक्ति का अवसर अगर हमको मिला हुआ है तो ये भक्ति हमें छोड़नी नहीं चाहिए। जब तक ये सांस रहे तब तक हमें भक्ति करनी, और भक्ति करते करते भगवान की सेवा करते करते उनका नाम लेते हुए हमें क्या करना चाहिए, शरीर छोड़ना चाहिए, तब हमारा ये जीवन सार्थक है। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसीलिए प्रहलाद को अपनी शिक्षा में कहे कि कुमार अवस्था अर्थात 5 साल के बचपन से ही हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान की सेवा में लगेंगे, जैसा आजकल लोगों की सोच है, ये बड़ी घटिया सोच है, क्योंकि बुढ़ापा में आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप क्या सेवा करेंगे। तो इसीलिए जब आपके अंदर चेतना आ जाए, जब किसी भक्त से आपके, अब देखिए ये तो प्रहलाद महाराज बड़े भाग्यशाली थे कि वो माँ के गर्भ थे और उनकी माँ का संपर्क एक भक्त महादेव नारी से हो गया, क्योंकि भक्त ही आपको भगवान की सेवा में लगाता है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं चाहे मैं क्यों ना हो, अगर आया हूँ तो निश्चित रूप से हमें कोई भक्त मिला, उसने प्रभुपाद जी की गीता दी और उसको पढ़ करके, तो क्योंकि भक्त ही इंसान को भक्ति में क्या करता है, लगाता है। तो प्रहलाद महाराज भक्त बने किसलिए, किसका संग पा करके, नारद जी, जब नारद उनके माँ से मिले तो यह संग तो भक्तों का संग करने से ही भक्ति मिलती है। तो इस प्रसंग से मतलब कि अगर हमें किसी भक्त के माध्यम से अगर हम यहाँ तक आ गए हैं और भक्ति में रम गए हैं तो हमारा यही श्रद्धा क्या है बराबर बनी रहनी चाहिए। हम भक्ति जितने करेंगे भगवान के का कृपा पात्र बनते जाएंगे। जैसा प्रहलाद महाराज को मिला, अरे प्रहलाद महाराज जब प्रहलाद महाराज प्रार्थना शुरू कर दिए तब भगवान का क्रोध धीरे धीरे जैसे जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते गए भगवान का क्रोध धीरे धीरे उससे क्या है कम होता है। जैसे जैसे प्रार्थना एकदम खत्म हो गई भगवान एकदम रुक क्या हो गए शांत हो गए। जैसे भगवान शांत हुए उन्होंने क्या किया प्रहलाद महाराज ने भगवान को हार पहनाया। हार पहनाने के बाद भगवान से रहा नहीं गया उन्होंने प्रहलाद महाराज को पकड़ा और अपने गोदी में जो है बैठा करके अब प्यार से जीभ निकाल कर चाटने लगे। जैसे आपने देखा होगा किस तरह शेर अपने बच्चों का प्यार जो करता है अपनी लंबी जीवा से क्या करता है चाटता है एक प्रेम दर्शाता है। तो भगवान किस तरह से एक बार कि गोद वही उसी गोद पे उसके पिताजी बैठे थे कितने कष्ट पाए है ना। लेकिन जब उनके पुत्र एक भक्त बैठता है तो कितना आराम मिलता है कितना मीठा एहसास होता है यह भक्ति का फल। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे बिल्ली वही होती है एक बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ करके एक घर से दूसरे घर ले जाती है तो बिल्ली के दांत वही होते हैं लेकिन वो दांत उसके बच्चों को सुख देते हैं। लेकिन वही बिल्ली जब किसी चूहे को पकड़ती है दांत वही होता है लेकिन दुर्दशा क्या होती है। तो भगवान का चंगुल उसी प्रकार से वही हाथ जब प्रहलाद महाराज के लिए कितना खतरनाक था उनके लिए क्या हृदय कश्यप के लिए लेकिन वही हाथ से भगवान जब प्रहलाद प्रदान करते हैं कितना सुख प्रदान करते हैं। और जब भगवान वरदान क्या भगवान की खासियत है कि भगवान वरदान दे रह नहीं सकते थे वो वरदान देना सुन जब उन्होंने मांगा प्रहलाद महाराज से प्रहलाद ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं इनका भी उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा कि प्रहलाद महाराज हे प्रहलाद कि तुम्हारी भक्ति की वजह से तुम्हारे पिता ही क्या जितनी पीढ़ियाँ 21 पीढ़ियाँ ऊपर नीचे सब क्या हो जाती हैं तर जाती हैं। तो अगर आप भगवान के भक्त बनते हैं तो आपका पूरा वंश क्या हो जाता है तर जाता है सबका उद्धार जाता है। एक भक्त सबको क्या करता है तार देता है। तो इस वर्तमान कलयुग में जिस कलयुग में हम सब आए हैं एक कलयुग वास्तव में एक चीज के लिए अच्छा है कि आप शत्रु द्वापर युग त्रेता युग की तरह तपस्या योग साधना नहीं कर सकते लेकिन ये कलयुग इतना अच्छा है कि आप वही फल प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ भगवान का नाम लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कलि काल नाम रूप कृष्ण होता है। तो वही कृष्ण जो सतयुग में नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए इस कलयुग में हम सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम सबको सुख देने के लिए आनंद देने के लिए वही कृष्ण किसके रूप में आ गए हैं नाम के रूप में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए नाम को अपनाना चाहिए और इसी नाम की कृपा से हमें किसकी कृपा प्राप्त होगी स्वयं कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर स्वयं जो क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु हैं और राधा और कृष्ण के ईगल अवतार हैं तो वही कृष्ण इस कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। और जानते हैं कि गौरांग महाप्रभु अपनी माँ के गर्भ से प्रकट होने से पहले सबसे पहले चैतन्य चैतन्य बताया गया है उन्होंने किसको प्रकट किया अपने नाम को प्रकट किया। अतः हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र पहले प्रकट हुआ। अगर आप चैतन्य चैतन्य पढ़े तो कृष्णदास कविराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान अपने नाम को पहले प्रकट किया जब क्योंकि यही नाम उनको क्या करेगा चुप कराएगा। इसलिए जैसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए रोना शुरू किए तो सारे जितने औरतें वहां पर सब लोग थे वो क्या बोलते हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल तो वो चुप हो जाती थी क्योंकि नाम ही क्या है दवा है नाम ही प्रेम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आकर के इसी हर नाम पर जोर दिया कि यदि हम जीव अपना उद्धार चाहता है वो हमें उसका रति किसमें होना चाहिए नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न होना चाहिए। आप सब बड़े सौभाग्यशाली भक्त हैं कि आप प्रभुपाद जी कृपा से आप आ गए हैं, तो इस हरिनाम को अपनाइए और भगवान श्री राधा राजकर्म जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रणाम इन सबसे यही प्रार्थना की आज के दिन कि प्रभु जिस तरह से आपने प्रहलाद महाराज की सुरक्षा की दुष्ट से बचाया, तुम्हारी भक्ति भी दुष्ट प्रवृत्तियों से क्या है बचे। हमारा दुष्ट प्रवृत्ति क्या है, काम क्रोध लोभ मत मत्सर, ये सब क्या है, ये सब दुष्ट प्रणय, ये सब से हमको आप ही बचा सकते हैं। तो हम इन सब चीजों से हम बचे, कौन बचाएंगे, नरसिंह भगवान। आप जानते हैं कि नरसिंह भगवान जो क्योंकि संसार के लोग गणेश जी को क्या मानते हैं, विघ्न विनाशक, ये भी हम क्लियर कर देना चाहिए। जो गणेश जी हैं शंकर जी और पार्वती जी के पुत्र गणेश जी, उनको विघ्न विनाशक कहा जाता, उनको भी कहा जाता है कि वो बाधाओं को क्या करते हैं, दूर करते हैं। भक्त समय सुन रूप को स्वामी जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा से पहले यदि आप गणेश जी की याद करना चाहते कर सकते हैं, क्योंकि उनकी क्या ड्यूटी है, वो बात भक्ति में भगवान की पूजा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए उसको अच्छा करते। लेकिन यही गणेश जी की शक्ति कौन प्रदान करता है, उनके इष्ट देव हैं नरसिंह भगवान। गणेश जी के जो इष्ट देवता है कौन है, नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान से उनको शक्ति मिलती है दूसरों को सुरक्षा कोच देने के लिए। इसलिए हमें नरसिंह भगवान आज के दिन वास्तव में हमारे लिए बड़े खुशी का है, बड़े आनंद के लिए, क्योंकि नरसिंह भगवान को प्रकट होने से सारे देवता के लोग खुश हुए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट सारे देवताओं को था। अब पृथ्वी पर सारे लोग कष्ट से पीड़ित थे और उस कष्ट को दूर करने के लिए स्वयं भगवान इस धराधाम प्रकट हुए, भक्तों को आनंद देने के लिए और भक्तों के महत्व को जताने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। इसीलिए भक्त लोग इसे बड़े उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि भक्तों को पता होता है कि भगवान का प्रकट होना, भगवान किन विपरीत परिस्थितियों में अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। तो नरसिंह भगवान का भी जो प्रकट है वो भी भक्तों को आनंद देने के लिए और दुष्टों को विनाश करने के लिए ही हुआ था। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, नरसिंह भगवान से हम लोग सब प्रार्थना करना चाहिए कि वो भी हर प्रकार से हमारी क्या करें, सुरक्षा करें, ताकि हम सुरक्षित रह करके और भगवान की चौ में हम सेवा अपनी करते रहें, ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, आपका आशीर्वाद महाराज। महाराज जब प्रवचन देते हैं बहुत बोल्ड देते हैं, बहुत वेरी बोल्ड, कि आपको भक्ति करनी ही करनी है, कोई समझौता नहीं। तो ऐसे क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया, इसीलिए हमको सेरे गुरु कहा, सेरे गुरु, कि प्रभुपाद जी ने कभी भी सिद्धांत से समझौता नहीं किया और उन्होंने अपने शिष्यों को भी हम सबको इसी तरह से प्रचार करने का प्रेरित किया कि हमें विनम्र रहना है, लेकिन जो मायावादी हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको हमें शेर की तरह दहाने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। तो और अंश हम महाराज में देखते हैं कि महाराज जब प्रवचन देते हैं तो एकदम पूरा भक्ति कर रहे। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज भागवतम की, नरसिंह भगवान की, बल स्वामी प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।